नमस्कार।
आज हम एक बहुत जरूरी सवाल पर बात कर रहे हैं, तीर्थ आखिर कैसे होने चाहिए।
और हम ये बात कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक उद्बोधन के आधार पर।
जी,
तीर्थ शब्द सुनते ही मतलब मन में एक शांति, एक पवित्रता सी आती है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, एक सुकून सा महसूस होता है।
हाँ, पर क्या आज के तीर्थ वैसे ही हैं या कुछ बदल गया है? चलिए पूज्य गुरुदेव के नजरिए से समझते हैं इसको।
हाँ, देखते हैं।
पूज्य गुरुदेव बताते थे कि पुराने जमाने में तीर्थ वो जगहें थी जहां जाकर इंसान अपने मन का मैल, मतलब अपने कलुष और कषाय, जो मानसिक गंदगी और बुरी आदतें हैं,
हाँ,
उनको धोकर साफ होता था। लोग सोचते हैं गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं।
हाँ, ये आम धारणा है।
पर गुरुदेव का असली जोर था ज्ञान की गंगा पर, मतलब तीर्थ वो जगह हैं जहां बाहरी नहीं भीतरी शुद्धि हो, विचारों की, संस्कारों की सफाई।
बिल्कुल सही कहा। और ये ज्ञान गंगा, ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव के हिसाब से तीर्थ महज घूमने फिरने की, मतलब सैर सपाटे की जगह नहीं है।
अच्छा,
तो फिर क्या है? ये वो स्थान है जहां व्यक्ति जाए, अपने अंदर झांके, आत्मनिरीक्षण करे, वहां जो अनुभवी मार्गदर्शक हो, ऋषि तुल्य लोग हो, उनसे सलाह ले, अपनी पिछली गलतियों को समझें, उनको सुधारने का प्लान बनाए, और भविष्य में जन सेवा जैसे अच्छे काम करने का संकल्प ले। और प्रायश्चित का मतलब भी वो सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं बताते थे।
हाँ, ये जरूरी है।
प्रायश्चित मतलब अपने गुण कर्म स्वभाव को बेहतर बनाना, ऐसी आदतें डालना जिनसे व्यवहार में शालीनता आए। ये एक मतलब एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ रस्म नहीं।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ ज्ञान ले लेना काफी नहीं, उसको अमल में लाना भी उतना ही जरूरी है।
हाँ हाँ बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान और कर्म, इन दोनों के तालमेल पर बहुत जोर दिया है। देखिए, पूजा, पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब ज्ञान पक्ष हो गया। लेकिन साथ ही सेवा, परोपकार, दूसरों की भलाई के काम, ये कर्म पक्ष है। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था बिजली के दो तारों का।
हाँ, वो क्या था?
जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तार मिलते हैं तभी तो बल्ब जलता है, रोशनी होती है ना?
हाँ बिल्कुल।
वैसे ही जब ज्ञान और कर्म मिलते हैं तभी अध्यात्म का असली असर, उसका चमत्कार जीवन में दिखता है। अकेले अकेले अधूरे हैं।
ये तो बहुत बहुत सटीक उदाहरण है। तो फिर एक आदर्श तीर्थ का माहौल, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए?
माहौल, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते थे कि तीर्थों में एक अनुशासन होना चाहिए, एक व्यवस्थित दिनचर्या, सुबह से शाम तक, जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे या आरण्यक।
आरण्यक मतलब वो जंगल वाले आश्रम।
हाँ, जहाँ ऋषि मुनि अध्ययन मनन करते थे, या जैसे बुद्ध विहार थे। ये सब सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये सीखने और सेवा के बड़े केंद्र थे। सैनिटोरियम जैसे भी, जहाँ तन मन का सुधार हो। आज की तीर्थ यात्रा को देखकर तो उन्हें बहुत दुख होता था, जहां लोग बस बाजार घूम रहे हैं, खिलौने देख रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, कभी कभी जेबें भी कटवा रहे हैं।
हाँ, ये तो होता है।
उनके अनुसार असली तीर्थ सेवन का मतलब है आत्म सुधार, अपने अतीत की गलतियों को, गड्ढों को भरना और भविष्य के लिए एक बेहतर इंसान बनने की योजना बनाना।
इतिहास में भी तो ऐसे उदाहरण मिलते होंगे जैसे आपने गुरुकुल कहा।
बिल्कुल, शंकराचार्य जी के स्थापित किए चार धाम देखिए, या भगवान बुद्ध के विहार। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है समर्थ गुरु रामदास जी का।
हाँ, महाराष्ट्र में
जी, उन्होंने जो हनुमान मंदिर स्थापित किए वे बिल्कुल इसी सोच पर थे। मंदिर बहुत साधारण थे, मिट्टी की दीवारें, फूस का छत, पत्थर की मूर्तियां, लेकिन वहां सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, पूजा भी होती थी।
अच्छा, मतलब पूजा एक हिस्सा थी, पूरा फोकस नहीं।
बिल्कुल, मुख्य काम क्या थे? व्यायामशाला, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, हिम्मत बढ़े, अनुशासन आए। पाठशाला, जहां हर कोई, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, सब पढ़ सके, विद्या प्राप्त कर सके। और रात में कथाएं होती थी।
कथाएं मतलब वही पुरानी कहानियां, कृष्ण जी की शादियां और गणेश जी का सर?
नहीं नहीं, यही तो पूज्य गुरुदेव एक बहुत जरूरी बात बताते थे। कथा का मतलब वो निरर्थक गपबाजी या सिर्फ मनोरंजन नहीं मानते थे।
तो फिर क्या?
कथा का उद्देश्य था कि प्राचीन कहानियों, दृष्टांतों से आज की समस्याओं का हल कैसे निकालें। जैसे उनकी रचना है दास बोध, उसमें जीवन जीने की, समाज सुधार की कितनी गहरी बातें हैं। कथा ऐसी हो जो समाधान दे। समर्थ गुरु रामदास के इन्हीं केंद्रों ने तो शिवाजी महाराज की सेना को वो नैतिक और शारीरिक बल दिया था।
अच्छा
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री शक्तिपीठों को, शांति कुंज को, इसी तरह के शिक्षण संस्थाओं का लोक शिक्षण केंद्रों का रूप देने का प्रयास किया, जहाँ ज्ञान बढ़े, रचनात्मक कार्यक्रम हो।
लेकिन आज देखें तो ऐसे जीवंत तीर्थ जहाँ सच में कुछ सीखने को मिले, मार्गदर्शन मिले, वो तो बहुत कम लगते हैं। ज्यादातर तो बस जैसे आपने कहा सैर सपाटे की जगह बन गए।
हाँ, यही गुरुदेव की सबसे बड़ी चिंता थी कि आज वो आरण्यक, वो गुरुकुल, वो साधना के सही मार्गदर्शन केंद्र लगभग खत्म हो गए हैं। तीर्थ बस घूमने की जगह रह गए हैं, जहाँ से वो असली प्रेरणा, वो आत्म सुधार वाली बात गायब है। इसीलिए वो कहते थे, उनका आह्वान था कि हम सिर्फ तीर्थ यात्रा ना करें
तो क्या करें,
बल्कि तीर्थों को उनके असली रूप में, जैसा वो होने चाहिए, वैसा बनाने में, उन्हें चलाने में अपना योगदान दें, उनका पुनर्जीवन करें।
योगदान? योगदान मतलब पैसा देना, चंदा देना?
नहीं नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, योगदान कई तरह का हो सकता है। देखिए, आज इन केंद्रों में सबसे बड़ी कमी किसकी है? प्राणवान परिव्राजकों की।
प्राणवान परिव्राजक मतलब?
मतलब ऐसे समर्पित, निष्ठावान लोग, मार्गदर्शक, जो वहाँ रहें, अपना जीवन दें और अपने आचरण से, अपने जीने के ढंग से वहाँ का माहौल बनाएं। सिर्फ कर्मचारी रखने से वो माहौल नहीं बनता।
सही बात है।
माहौल तो प्राणवान लोगों से बनता है। तो योगदान हो सकता है समय दान, कि हम खुद वहाँ जाकर रहें, सेवा करें, मार्गदर्शक बने, या फिर अर्थदान करें।
अर्थदान किस लिए?
ताकि जो लोग अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना चाहते हैं पर उनके पास अपने गुजारे का साधन नहीं है, उनकी मदद हो सके। गुरुदेव कहते थे कि हजारों लाखों लोक सेवी सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि उनके पास निर्वाह का साधन नहीं है।
अच्छा,
तो अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करके उनकी मदद करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है, एक बहुत बड़ा योगदान है।
तो संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि तीर्थ सिर्फ पत्थर की इमारतें ना हो,
बिल्कुल,
बल्कि वो आत्म सुधार, ज्ञान, कर्म, सेवा और इंसान के समग्र विकास के जीवंत केंद्र बने, और जो सतही कर्मकांड हैं उनसे ऊपर उठकर उनके असली उद्देश्य को हमें फिर से जगाना होगा, जीवित करना होगा।
हाँ, असली तीर्थ यात्रा बाहर जाने की नहीं, अपने भीतर उतरने की है और ऐसे केंद्र बनाने की है जहाँ दूसरे लोग भी अपने भीतर उतर सके।
तो पूज्य गुरुदेव का अंतिम विचार हम सबके लिए शायद यही है कि तीर्थ यात्रा करने से एक कदम और आगे बढ़ें और तीर्थों के पुनर्जीवन में उनको फिर से वैसा बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, चाहे अपना समय देकर, अपने श्रम से या अपने धन से।
जी,
ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान गंगा सच में बहती रहे। अब सवाल ये है कि हम और आप इस महान काम में भागीदार कैसे बन सकते हैं, ये सोचने वाली बात है और शायद अमल करने वाली भी। ओम शांति।